गिरीश भाई ने बहुत सुंदर अभी बताया हम सबको स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में, और अंत में उन्होंने इसलिए इस तरह से समाप्त किया कि किस तरह से हम स्ट्रेस मैनेजमेंट करें। मैंने कुछ चीज इंटरनेट से ली जो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि कैसे स्ट्रेस मैनेजमेंट आम जनता अपना करती है, क्योंकि वन ऑफ द मेथड्स टू कंट्रोल योर स्ट्रेस बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है, वो आप सब जानते हैं, क्रोध। ये बिल्कुल ठीक बात है, अगर आपको स्ट्रेस होता है तो निकाल दीजिए, इट्स वेरी इजी। तो अभी हमारे उसमें कि कैसे आमतौर में दुनिया में दिस गिव्स अ मैसेज कि हाउ वी कैन रिलीव आवर स्ट्रेस, इट शोज, आई डोंट नो हाउ एवरीबॉडी कैन सी हाउ एंग्री यू आर। अभी भी पूछता है, अभी भी आप गुस्से में हैं? कितना गुस्से में हैं आप? अभी देख लीजिए तीनों में से कौन सा आपका गुस्से वाला फेस है। अच्छे से हैमर लगाने के बाद गुस्सा रिलीज कि अभी भी है? है तो कितना है देख लीजिए। फिर से और मेथड लगा लीजिए स्ट्रेस को रिड्यूस करने का। अभी तो ठीक है कि अभी भी गुस्सा है? आई थिंक अभी गुस्सा अभी तो ठीक हो गया है, अभी आपका स्ट्रेस मैनेज हो गया है ना? टोली बट रही है, हाँ बिल्कुल। सो आमतौर पे जब आप कभी, क्योंकि आज जमाना है हाई टेक्नोलॉजी का, आज जमाना है इंटरनेट का, आमतौर पे ये सब मेथड्स इंटरनेट में, वी आर फुली इन्फॉर्म्ड, सारे इन्फॉर्मेशन हमको इंटरनेट में मिल जाती है कि आप किस तरह से अपना स्ट्रेस मैनेजमेंट कीजिए। तो ये लेटेस्ट उसमें आया हुआ था कि आप अपना स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं गुस्से के द्वारा। आप सब इसमें सहमत होंगे? क्या आप समझते हैं तरीका गलत है? तो क्या तरीका होना चाहिए? कौन कहता है तरीका गलत है, गुस्सा करने से स्ट्रेस रिलीफ नहीं होता है? तो क्या तरीका होना चाहिए? प्रॉब्लम बढ़ता है गुस्सा करने से। अच्छा चलिए ठीक है, आप सब योगी बैठे हैं तो हम कुछ नहीं कह सकते हैं। वैसे आम जनता ये मानती है कि गुस्सा करने से, जब हमारे स्ट्रेस आता है तो आप गुस्सा करके उसे निकाल दीजिए। और ये भी माना जाता है कि एंगर इज असेंशियल, ये बहुत जरूरी है। और एक टाइम्स ऑफ इंडिया जून 2000 में बहुत अच्छा आर्टिकल आया था, उसमें उसने दिखाया था बहुत बड़ा फोटो बना के, उसने अपने बॉस की एक बनाए फोटो, फोटो नहीं उसको मूर्ति बना के अपने, अच्छे जिसको उसके बहुत गुस्सा था बॉस के ऊपर, उसको हैमर लाला के जोर से मारा, अच्छे से मारा। जब अच्छे से मार दिया उसको, सुबह से लेकर शाम तक लगे रहे, बाद में बोलते हैं मेरा गुस्सा ठंडा हो गया और मुझे अपने बॉस से कोई निराशा नहीं है, कुछ नहीं है। तो ये एक मेथड्स बताए गए हैं, आखिर ये उन लोगों के लिए है जिनको और मेथड्स नहीं आते हैं। परंतु जहां तक हम क्रोध की बात करते हैं, आप सब ये तो कहेंगे कि हाँ गुस्सा जरूरी नहीं है, पर गुस्सा इस समय एक एपिडेमिक के फॉर्म में है। एपिडेमिक का मतलब तो आप सब समझते होंगे? नहीं, शायद आप में से कोई गुस्सा नहीं करता होएगा, परंतु करते भी हैं। और जरूरी नहीं कि हम गुस्सा नहीं करते हैं तो हमें इसका इफेक्ट नहीं है। आमतौर पर इस समय क्रोध के शिकार ऑलमोस्ट एवरीबॉडी है, हर एक को कभी ना कभी किसी ना स्टेज पे गुस्सा आया भी होएगा और आता भी है और आ भी सकता है। चलो ना भी आता हो, योग के द्वारा हमने उसको कर लिया है, हम लोग यहाँ योगी बैठे हैं, परंतु एक बहुत बड़ी बात है जो आज समाज के अंदर हो रही है, हम सब उस गुस्से के शिकार है जो आप रोज न्यूज सुनते हैं। 11 सितंबर को आपने सुना क्या न्यूज था? What is the root cause of it? Anger, terrorism. Terrorism पैदा ही anger से हुआ है, क्रोध अग्नि वो जल रही है। अभी 13 दिसंबर को पार्लियामेंट में सुना anger. So it is basically an epidemic. सारे विश्व के अंदर जो ये terrorism फैल गया है, इसमें ना केवल हम शिकार हैं, सारी दुनिया इसका शिकार है। तो इसलिए हम क्रोध नहीं करते, पर क्रोध करने वाले से तो हम डरते हैं, हम उसके उस भूत के प्रभाव से बाहर निकलना चाहते हैं, तो उस सारे विश्व के अंदर जो एक एपिडेमिक आ गया है, इस क्रोध को खत्म करना बहुत जरूरी है। शायद इसीलिए गिरीश भाई, हमारे प्रेमवसन भाई और लीडर बनारसी भाई ने ये टॉपिक एंगर, ओवरकमिंग एंगर रखा है। तो इसलिए हमारे पर्सनल लेवल पे, सोशल, ऑक्यूपेशनल और स्पिरिचुअल एस्पेक्ट में सब जगह गुस्से का जरूर प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट प्लीज। ओके, नाउ द क्वेश्चन गोज, व्हाट एंगर इज, है क्या गुस्सा, है क्या क्रोध, क्या है? क्या इसको कोई जवाब दे सकता है? क्या है गुस्सा, क्या है क्रोध, क्या है, व्हाट इज एंगर? एनीबॉडी कैन से ऑन दिस साइड? इट्स एन इमोशन। ओके, इट्स अ विकार है। अच्छा, और बात पूरा ना होने से आता है, और ये हमारी वीकनेस है। कैसी वीकनेस? वीकनेस, फिजिकल वीकनेस, मेंटल वीकनेस, सोशल वीकनेस, मेंटल वीकनेस। ओके, दिस साइड, क्या है गुस्सा? रिएक्शन टू एक्शन, ये तो अच्छा रिएक्शन भी हो सकता है। एक्सप्रेसिंग योर इनर फीलिंग्स, फ्रस्ट्रेशन। ओके, स्ट्रेस, दैट्स राइट। नकारात्मक प्यार, बहुत अच्छा, दैट्स राइट, एब्सोल्युटली राइट। टेम्परेरी इंसैनिटी है, देखिए कितनी अच्छी अच्छी बातें हैं, हम सब जानते हैं कि क्या है। और कुछ पीछे वाले अच्छी सी बात बताएं। एंगर इज मैडनेस, इट इज हाफ मैडनेस, इट्स
एब्सेंस ऑफ पीस,
एब्सेंस ऑफ पीस, कितनी अच्छी बात बताई। शिलू दीदी हमारे सामने है, डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर है। शिलू दीदी ने कहा इस एब्सेंस ऑफ पीस, एब्सोल्युटली राइट। ये सब बातें जो आपने कही हैं, ये बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। लेकिन आज किताबें क्या लिखती हैं, आज इंटरनेट क्या इन्फॉर्मेशन देता है, वो ये है एंगर इज नॉर्मल। तो अभी हमें चैलेंज करना होगा समाज को, जैसे एंगर इज नॉर्मल, जैसे एंगर इज हेल्दी, they say anger is a human emotion and anger is, शायद आज से कुछ समय पहले ये मानते थे ये बातें, अभी इंटरनेट में भी इसका चेंज आया है और उसने भी कहा है जो आप सबने कहा और शिलू दीदी ने उसका प्रूफ दिया, इस एब्सेंस ऑफ पीस बेसिकली, इस ए स्पिरिचुअल सिकनेस, लाइक स्पिरिचुअली स्पिरिचुअल वीकनेस। ओके, नेक्स्ट। हाँ, अभी हाँ, एंगर इज नॉर्मल हेल्दी इमोशन, दिस इज व्हाट पीपल थिंक when it goes, basically problem occurs, बोलते हैं normal, essential, it's part of life, ये तो होना ही चाहिए, पर लोग उस anger को खराब समझते हैं जब व्यक्ति out of control हो जाता है। पर उन्हें ये समझाना बहुत मुश्किल है कि out of control तभी होता है जब उसके अंदर थोड़ा बहुत anger का संस्कार होता है। तो I think जब तक हम उन्हें यहाँ लेकर नहीं आएंगे मधुबन में, या योगी भाई बहनों के कनेक्शन में नहीं आएंगे, उन्हें बड़ा समझना मुश्किल है। उनकी डेफिनेशन के हिसाब से तो ये है, एंगर वो खराब है जो डिस्ट्रक्टिव है, एंगर वो खराब है जो आउट ऑफ कंट्रोल है। परंतु ऐसा नहीं है, क्योंकि आज फिर से इंसान बदला है और सबसे बड़ी प्रॉब्लम, जो मेजर प्रॉब्लम, जो हो सकता है हम सब गुस्सा ना करते हो, परंतु ऐसे भी लोग हैं जो परेशान है बच्चों के गुस्से से। इस समय सबसे ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम जो आ गई है कि पेरेंट्स बच्चों का गुस्से को टैकल नहीं कर पा रहे हैं। मुझे याद है रिसेंटली एक डॉक्टर, जो मेरी कुलीग है, दोनों हस्बैंड वाइफ डॉक्टर्स हैं, फैमिली में हर प्रकार का उन्हें फैसिलिटीज है बच्चों को, तो बोली कि मैं शाम को जब 6:30 बजे घर पहुंची, तो मैं अपने घर के बाहर बहुत बड़ी भीड़ देख के बहुत परेशान होगी कि ये क्या, मेरे घर के बाहर इतनी भीड़ लगी है। तो अचानक देखा कि बहुत लोग खड़े हैं और मेरा बच्चा, अपना बच्चा, टीचर के बाल खींच के उसे बाहर ले जा रहा है। वो कहते मैं तो क्या कहूं, मैं इतनी शर्म से पानी होगी कि मेरा ही अपना बच्चा है जो 8 इयर्स का है, और ट्यूटर जो उसको पढ़ाने आई थी मैथ्स, उसी के बाल खींच के उसको बाहर ले जा रहा है और सब लोग छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम्हारी ट्यूटर है। तो ऐसे वाला गुस्सा बहुत सारे पेरेंट्स, 90% ऑफ पेरेंट्स जो कि हस्बैंड वाइफ दोनों प्रोफेशनल्स हैं, ऐसा नहीं है कि वो अनएजुकेटेड हैं, पर वो अपने बच्चे के लिए साइकोलॉजी साइकैट्रिस्ट से एंड साइकोलॉजिस्ट से बच्चे के लिए कंसल्टेशन लेते हैं जस्ट कि उनका गुस्सा बहुत ज्यादा है। तो जहां तक हम टेररिज्म की बात करते हैं या और बातें करते हैं, आज की नई जनरेशन वो गुस्से से ही बहुत भरी हुई है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम लोग वी शुड ट्राई टू ओवरकम एंगर, इसके हम संस्कार ही परिवर्तन कर दें। नेक्स्ट, ओके, सो इंटेंसिटी ऑफ एंगर, मैं समझती हूँ आप सबको एक्सपीरियंस होगा किसी ना किसी को पुराना, देयर इज नो हार्म इन टेलिंग, कि ऐसा कुछ है जो कई समझे कि मैं बता सकता हूं कि मुझे कितना गुस्सा आया तो मैंने क्या किया। हमने कंप्यूटर टीवी तोड़ते तो देखा है, लोगों को हैमर्स मारते भी देखा है, पर कोई अपना अनुभव सुनाना चाहेगा कि कितना गुस्सा, कोई भी सुनाना चाहे अच्छा है, क्योंकि गिरीश भाई भी शायद मेरा टॉपिक इसलिए रखते हैं कि मेरा गुस्सा निकल जाए, तो हो सकता है क्योंकि बात सुनाने से करने से हमेशा गुस्सा खत्म हो जाता है। कई बार कभी आने भी लगता है तो मैं सोचती हूँ कि मैंने तो टॉपिक सुनाया था ना, मैं कैसे गुस्सा कर सकूं। एनीबॉडी वुड लाइक टू से एक्सपीरियंस? हाँ जी बताइए, जो भी बताना चाहते हैं गुस्से में आके बता सकते हैं। यू कैन डू प्रॉपर एक्टिंग, यू वॉन्ट अ माइक?
ओम शांति। मैं पेशे में सर्जन हूं और पहले से ऐसा पेरेंट्स ने ऐसा सिखाया है कि सच बोलना, और इसी वजह से कोई भी झूठ बोले तो सहन नहीं कर सकता और बहुत गुस्सा आ जाता है। टाइम का भी बहुत पंक्चुअल हूं, इसलिए किधर भी जाने का हो अगर टाइम नहीं अच्छा होता है तो फिर बाद में मन में बहुत गुस्सा आ जाता है, और यही गुस्से की वजह से अब तक मैं परेशान था। और जब भी मैं घर से निकलता था तो घर से अपना हॉस्पिटल है अराउंड अबाउट 1 किलोमीटर, गांव का ही है, तालुका लेवल का है, लेकिन बीच में छे सभी कुछ, ये शाकभाजी वाले, ये भूंड वाले, गाय वाले, सब भी बीच में आते तो सभी को बांटता बांटता चला जाता था म्युनिसिपालिटी को भी, और इतना गुस्सा रहता था कि सारे घर में भी अगर जाता तो बच्चे लोग और घर वाले भी ऐसे सोचते कि कपाल में कितनी करचली पड़ी है, उसके मुताबिक वो सोचते थे कि आज बहुत गुस्से में डॉक्टर साहब, तो उसको बताना है, सताना नहीं है। मैं बहुत सोचने लगा, तब मैं लगा इसका कुछ करना चाहिए, क्योंकि सामने वाले में कुछ इफेक्ट नहीं होती है, चाहे तुम कितना भी गुस्सा करो, सारे दिन अपने आप के तकलीफ रहती है और सारा दिन परेशान रहते हैं। इसीलिए एक बात हुई कि 9 जनवरी 2001 को मिस्टर कश्यप करके गांधीनगर में है, वो अपने ज्ञान में चलते हैं और वहां बालासुंदर में गीता पाठशाला है, वहां उसकी बहन भी इधर आई है जो चलाती है, तो वहां वो बोले कि आपके नॉर्थ गुजरात वाले एक भाई है इंजीनियर साहब थर्मल में आए हैं, डेप्यूटेशन पर मिलना है, मैं जरूर मिलेंगे, अपने वाले हैं तो जरूर मिलेंगे। तो जब मिलने को गया तो उसने बाला बताया कि वो उस ज्ञान की बात बताने लगा और उसने बोला कि मेरे में एक क्रोध का प्रॉब्लम है, उसको कुछ मैं करना चाहता हूं, तो कहते ऐसा है तो मैं आपको बताऊंगा। और ऐसा हो गया कि तीन ही दिन के बाद वो माइंड डेवलपमेंट का और सेमिनार वहां थर्मल में हुआ, जिसमें क्रोध का एक पॉइंट था कि क्रोध कैसे आता है, क्या करता है। तो मैंने वो तीन दिन वो सेमिनार अटेंड किया, उसके बाद में एक हफ्ते का राजयोग का शिविर अटेंड किया, उसके बाद में क्रोध का तो वॉल्यूम चला गया लेकिन मैं ज्ञान में आ गया। ओम शांति।
वेरी गुड, तो कितनी अच्छी बात सुनी हम सबने। डॉक्टर साहब ने सुनाया अपना अनुभव, और कोई भी सुनाना चाहेगा? एक बहन सुनाना चाहती है, कोई भी? कोई हर्जा नहीं होता सुनाने में, आप कहे तो मैं अभी अपना सुना सकती हूँ। एनीबॉडी? हाँ हाँ,
अभी क्योंकि क्रोध तो आता ही है, ऐसा नहीं है कि क्रोध नहीं आए, क्योंकि उस समय राजयोग सीखा नहीं था अच्छे से, और शुरू में जब मैं ज्ञान में आई थी तो मेरे को बहुत बुरा लगता था कोई मुझे साइन करके बुलाए, ए कम हियर, तो मुझे उस पर बहुत गुस्सा आया, कुछ नहीं बोला, मैं जा रही हूँ, इधर आओ, ये करना है, वो करना है, इस चीज कमांडिंग नहीं। मैंने कहा कि मैंने काम तो कर दिया, फिर चुप रही, लेकिन शाम के समय फिर वैसा हुआ, तो मैंने उसको बोला, सी इफ यू वॉन्ट टू टॉक टू मी टॉक इन मैनर्स, आई डोंट वॉन्ट टू लिसन यू। तो कह रहे कि मैंने कहा क्या है, मैंने कहा मुझे ये साइन बिल्कुल पसंद नहीं है, अगर आपको बोलना है तो ठीक से बोलो। शी वॉन्ट टू एक्सप्लेन मी, आई सेड आई डोंट वॉन्ट टू लिसन एनीथिंग एंड आई जस्ट वॉन्ट टू स्टॉप इट, डोंट टॉक टू मी। अबाउट दैट मैटर, आई वॉन्ट टू फॉरगेट इट. देन शी इज सेइंग, मैं तुमको एक्सप्लेन करना चाहती हूँ, दिस इज द रीजन, ये वो. मैंने कहा कि कोई रीजन नहीं सुनना है मुझे, बिकॉज आई एम नॉट इन मूड टू लिसन. देन आई सेड, सिस्टर आस्क्ड मी कि व्हाट हैपेंड. मैं कहा वो मेरे से, शी इज एक्सप्लेनिंग मी, मुझे बता रही है कि ये रीजन था. मैं उसका रीजन कुछ नहीं सुनना चाहती, जो होना था हो गया, अब मेरे से कोई ऐसी बात नहीं करनी चाहिए. यानी कि मेरे को कोई भी रीजन सुनना पसंद नहीं था. फिर धीरे धीरे मैंने अपने आप को एनालाइज किया कि ये तो ठीक नहीं है. ठीक है, वो अपना मेरे को हल्का करना चाहती है. मैं अपने मन में कोई ऐसी बात ना रखूं, तो जैसे राजयोग के अभ्यास के बाद धीरे धीरे अब तो जो है नहीं आता है, क्योंकि मैं खुद को अंडरस्टैंड कर सकी हूँ और दूसरों को भी अंडरस्टैंड कर सकी, तो इसलिए मुश्किल नहीं होता है.
वेरी गुड. आई थिंक हम सबके ऐसे वाले एक्सपीरियंस जरूर है कि हमें किसी ना किसी बात पे गुस्सा आ जाता है. अगर सबसे मैं कारण पूछने शुरू करूं तो सभी आप मुझे कारण बता देंगे कि किस कारणों से गुस्सा आता है. किस कारणों से गुस्सा आता है? जूनियर्स पर गुस्सा आता है जब वो बात नहीं मानते, और झूठ बोलता है कोई तो गुस्सा आता है. मन मुताबिक काम नहीं होता तो गुस्सा आता है. और जहाँ अटैचमेंट होता है वहाँ गुस्सा आता है. कोई हमारी बात नहीं, इच्छाएं पूरी नहीं होती है. और अमृत वेले नहीं उठते तो अपने पे गुस्सा आता है. ये तो अच्छी बात है, ये गुस्सा तो आना चाहिए ना. चिलो दीदी क्या कहते हैं आप, ये गुस्सा तो आना चाहिए. अगर अमृत वेले नहीं उठे तो अपने को तो थोड़ा झाड़ना चाहिए ना, ये तो होना चाहिए. बिल्कुल, अपने आप को पनिशमेंट देना है कि अगले दिन शायद हमें 2 बजे उठ जाना है, 2:30 बजे उठ जाना है. और बहुत सारे कारण है गुस्सा, इसको डिस्कस करने की जरूरत नहीं. सभी को अपना अपना अनुभव है. तो चाहे वो कोई व्यक्ति हार रहा है तो भी गुस्सा आता है, उसको सक्सेस नहीं मिलती है तो भी गुस्सा आता है. और टू मैनेज एन इंस्टीट्यूशन, यस, जब आपको बहुत बड़ा जिम्मेवारी होती है, मैनेज करना होता है तो भी बहुत गुस्सा. जब मान शान नहीं मिलता तो भी गुस्सा आता है. और बताइए, कोई ना कोई क्या छोड़ देता है. कैच छोड़ देता है. क्रिकेट मैच में अगर कैच छूट जाती है तो बहुत गुस्सा आता है. वेरी गुड. अब पोजीशन नहीं मिलती है जो हमको मिलनी चाहिए थी. और डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए भी गुस्सा करना पड़ता है. वो आता नहीं है, वो करना पड़ता है. दिखावे का होता है, वो एक्टिंग करनी पड़ती है. ये तो अच्छा
है.
हाँ बिल्कुल जी. क्योंकि वो जो करता है, जो कहता है, वो करता नहीं है. पॉलिटिशियन लेक्चर देता है तो गुस्सा आता है. और कोई डिसरिगार्ड करते हैं तो गुस्सा आता है. किसमें? बच्चे पढ़ते नहीं है, बात नहीं मानते हैं हमसे, जो एक्सपेक्ट उनसे करते हैं, उनको ट्यूशन पढ़ाते हैं तो गुस्सा. अपने अंदर कोई कमजोरी होती है, वीकनेस होती है, फिजिकल वीकनेस, तो भी गुस्सा आता है. कि वी आर नॉट एबल टू डू वट एवर वी वॉन्टेड, वी आर डिपेंडेंट, तो भी गुस्सा आता है. अपनी हाँ वो तो है, गुस्सा करना हो या नहीं वो तो खैर हमें योग ने सिखाया है. हाँ जी, और कुछ? कोई अपनी कमी, यानी हमारे इम्पेशेंट हो जाते हैं, उसकी बार बार एक ही बात सुनाता रहता है तो भी गुस्सा आता है. हाँ, ज्यादा थक जाते हैं तो भी कोई बात करता है तो गुस्सा आता है. मुझे याद है एक बार चक्रधारी दीदी बहुत अच्छी बात बता रही थी, और वो एक लेडीज का ग्रुप था, तो बोली कि आपने सारे दिन से सारे काम कर लिए, पूरे सुबह से लेकर रात तक आप करते रहे करते रहे करते रहे, और आप बिल्कुल थके हुए नहीं थे. अचानक एक बच्चे ने कहा, मम्मी आप पानी का गिलास भी लेते आना. बस उस समय गुस्सा आ गया कि सुबह से तो आप थके नहीं थे, पर एक छोटी सी बात पे क्यों गुस्सा आ गया. कि उसने ये कह दिया कि आप, उसको लगा कि मैं थकी हुई हूं और ये बच्चा मेरे पे ऑर्डर कर रहा है. तो इसका मतलब गुस्सा उसका पायलट था. ये नहीं कि छोटी सी बात में आ गया, गुस्सा अंदर आया हुआ था. छोटी सी बात में वो थ्रेशोल्ड क्रॉस कर गया, वो थ्रेशोल्ड के नीचे था. तो बहुत सारी बातों में हमें गुस्सा आता है. नेक्स्ट प्लीज. हाँ, तो सारी बात है, छोटे छोटे गुस्से को तो हम मैनेज कर भी लेते हैं और जिंदगी में चलाते रहते हैं, और हमें मालूम भी नहीं होता कि हम गुस्से वाले व्यक्ति हैं. क्योंकि कई ऐसी पोजीशंस होती हैं लाइक बॉस हैं, बड़े हैं, उनको शायद कोई पॉइंट आउट भी नहीं कर सकता। बच्चों को तो हम कह देंगे बेटे गुस्सा नहीं किया करो, एक ऐसी पोजीशन में जब आ जाते हैं तो हमें कोई पॉइंट आउट भी नहीं कर सकता कि हम गुस्सा करते हैं। पर जब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है तो आती है मेन प्रॉब्लम्स, और वो धीरे धीरे आउट ऑफ कंट्रोल होता है, एक दिन में नहीं होता। ये बचपन में हमें रोका नहीं गया है, हमें पॉइंट आउट नहीं किया गया है, या हमें शिक्षा नहीं दी गई है, और शिक्षा देने के बावजूद हमने कोशिश नहीं करी है अपने आप को सुधारने की। और जब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है देन हमारे पर्सनल लेवल पे भी इफेक्ट करता है और हमारे सोशल एंगल पे भी इफेक्ट करता है ये। मुझे याद है रिसेंटली एक पेशेंट हमारे पास आया था जो लिबर्टी का बहुत सीनियर मैनेजर है। अभी तो खैर वो योगा क्लास अपना मेडिटेशन अटेंड कर रहा है करनाल के अंदर। उसके वो हार्ट अटैक के वजह से आया था, और उसका जब बलूनिंग हुआ उसके बाद उसको बोला गया कि इमीडिएटली कल आपका ऑपरेशन होगा। तो अचानक से, क्योंकि मुझे उसके लिए एनेस्थीसिया देना था, तो मैं उसके पास गई, तो बेड पे था वो। जैसे मैंने उसको एग्जामिन किया, बोला आपका कल ऑपरेशन है, आपको डर है? बोले बहुत डर है। तो मैंने एक बात पूछी, आपके स्वभाव में गुस्सा का नेचर है? बोले 100% गुस्सा करता हूं हर वक्त। अपने वर्कर्स के ऊपर मैं गुस्सा किए बिना बात ही नहीं करता हूं। रीजन पूछा, वो टाइम पर नहीं आते हैं, भाग जाते हैं, काम नहीं देते हैं। तो ऐसे ही मैंने बोला कि फिर अभी तो आपको हार्ट अटैक हुआ है, अभी आप कुछ दिन नहीं जाएंगे तो आपके वहां काम कौन करेगा? बोले काम तो चलेगा। तो इसका मतलब आप यहां बैठे हो तो आपका काम चलेगा। तो धीरे में बोला, तो फिर मुझे गुस्सा क्यों आता है? मैंने बोला अब आप कल ऑपरेशन करा लीजिए, फिर आपसे बात करेंगे गुस्सा क्यों आता है और इसका रिजल्ट क्या है। क्योंकि जब पर्सनल प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं तब तक हमें रियलाइज नहीं होता है जब तक हमारी सोशल प्रॉब्लम चल रही है, क्योंकि दुनिया वाले इस लेवल पे हमें कह नहीं सकते हैं कुछ भी, हम बहुत ऊंची पोजीशन पे होते हैं। पर जब वो पर्सनल प्रॉब्लम में आ गया, जब उसके हार्ट पे अटैक हो गया, उसका ब्लड प्रेशर हाई है, तो धीरे धीरे बात करने लगा, अरे मैं जब घर जाता हूँ गुस्से में तो मेरे दोनों बच्चे भाग जाते हैं, पापा आ गए गुस्से में है। अब उसे अब रियलाइज हो रहा है जब वो बिस्तर पे लेटा हुआ है, तो आज तक उसे रियलाइज नहीं हुआ था। तो वो सारी बातें अपनी उसी समय सुनाने लगा। मैंने बोला नहीं कल ऑपरेशन है, अभी आप सो जाइए। नहीं नहीं नहीं, मुझे गुस्से के लिए बताइए क्या करना होगा, शायद इसी कारण से मुझे गुस्सा आया। खैर वो बहुत लंबी कहानी हुई, फिर हमने उसे बताया राजयोग का मेडिटेशन, बताया कि हम यहाँ क्लासेस कराते हैं हॉस्पिटल में, अभी तो वो रेगुलर स्टूडेंट है करनाल के अंदर। परंतु किस तरह से वो पर्सनल जब इन्वॉल्वमेंट होती है, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि रास्ते में गाली देते जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बहुत लोग हैं जो ड्राइविंग करते हैं गाली देते जाते हैं, हर व्यक्ति को पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं, इतने गंदे शब्द होते हैं कि आप सुनो तो हैरान हो जाओ। और मैंने बहुत बार देखा है कि जो वाइफ बैठी होती है बाद में कहती है चुप चुप, फिर वो कहता है मैं नहीं बोलूं तो अच्छा है, वो वाले शब्द, उल्लू का बच्चा, पता नहीं क्या क्या बोलते जाते हैं रास्ते में। और फिर उसकी वाइफ को उसका शर्ट खींचना होता है चुप चुप, पर वो उनको कहने की आदत है। तो ये वास्तव में जैसे कि एक बार बता रही थी जयंती बहन लंदन वाली, आप लोगों ने छुली दीदी को तो मालूम होगा, बोले आजकल जो गुस्सा कितना है उसका मीट्रिक टेस्ट कैसे करते हैं, वो है रोड रेज। रोड रेज समझते हैं आप, यानी आपको ट्रैफिक में ड्राइविंग करते हुए कितना गुस्सा आता है उसका टेस्ट करते हैं। क्योंकि ये बहुत कॉमन हो गया और देशों में कि कोई व्यक्ति जा रहा है और आपके सामने से दूसरा रॉन्ग साइड से आपको ओवरटेक करके आगे चला गया तो क्या हालत होगी, गुस्सा आएगा ना? अच्छा इतना गुस्सा आ जाएगा वो बोलेगा अब मैं इसको ओवरटेक करूंगा। ये बहुत हाईवेज में यंगस्टर्स की इंडिया में भी प्रॉब्लम्स हो चुकी हैं। अगर आपने कभी देखा हो तो बच्चों को रोकना पड़ता है, जो अभी नए नए ड्राइविंग सीखे होते हैं इनको बड़ा यंग ब्लड है, उन्हें कहना पड़ता है, नहीं तो बहुत जबरदस्त रेस हो जाती है। और उनकी भी रेस होती है कि ये वाली गाड़ी को मैं आगे लूंगा, ऐसे करूंगा। और यहां तक कि अमेरिका वगैरह में और देशों में देखा गया है कि रेड लाइट में आकर उन्हें इतना गुस्सा होता है कि उसको शूट कर देते हैं कि तुम मेरे से आगे क्यों ले गया। तो यहां तक वो इसको बोलते हैं रोड रेज, कि आपको सड़क पे कितना गुस्सा आता है ये आपकी पहचान है। नेक्स्ट, तो अभी हम क्या क्या करते हैं गुस्से में, तो अल्टीमेटली अब आप कैसे अपने गुस्से की फीलिंग्स को, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमें गुस्सा नहीं आएगा, कोई भी चीज जैसे बताए कारण कि कोई भी ऐसे कारण होंगे तो हमारे अंदर एक ऐसी, क्योंकि है तो ये इमोशन, एक फीलिंग है, एक अंदर से कुछ फीलिंग आएगी, पर उस फीलिंग को हम डील कैसे करते हैं। तो एक तो बताया कि हम गुस्से में कुछ बोलते हैं, तोड़ते हैं, फोड़ते हैं, और दूसरा अगर हम बोल नहीं पाते हैं, अब बॉस के सामने जूनियर क्या बोलेगा, तो क्या करता है? सप्रेशन, इज इट राइट? नहीं, इट इज राइट टू सम एक्सटेंट। कैसे इट इज राइट? बाद में एक्सप्रेस कर दे, वाइफ पे जाके, अपने घर जाए, बच्चों पे एक्सप्रेस कर दे, धम धम धम। हाँ, फिर कैसे करें? बाद में काम डाउन करें, पहले उसको पी ले अंदर, अपना ब्लड प्रेशर बढ़ा ले पहले। क्या करना चाहिए? समाने और सहने की शक्ति, बिल्कुल। आप तो योगियों वाली बातें बहुत अच्छी करते हैं, पर हमें बताया गया है कि जनरल पब्लिक है, तो आप थोड़ा सा उस हिसाब से बोलिए कि क्या किया जाए। सपोजिंग ऐसी कोई बात हो ही जाए और बहुत गुस्सा आ जाए, तो उस अपने फीलिंग्स को जो हमारे अंदर है उसके कैसे जिल करें, एक्सप्रेस कर दें। ओके, तब चुप हो जाए, ठीक है। ओके, ठीक है,
वो सामने वाला ठीक लेवल पे आ जाता है, हाँ हाँ,
ठीक है। तो एक्सप्रेस भी करें और सप्रेस भी करें, पर टाइमिंग्स देख ले, किस टाइम एक्सप्रेस करना है और किस टाइम सप्रेस करना है। ऐसी बात सब लोग क्या कहते हैं, ऐसा ही कि एक्सप्रेस कर दें इमीडिएटली? बताइए बताइए, कभी कभी कर सकते हैं। हाँ, किसमें? कोलेक्स में कर लेते हैं, बॉस पे नहीं कर सकते हैं। तो अपना गुस्सा दूसरे पे निकाल दें और उसको हर्ट कर दें, कह दे दूसरे को। ओके, एटलीस्ट ओपन अप, वी शुड लेट इट आउट। हाँ जी, ओके, सो वी शुड नॉट सप्रेस इट। और ओके ओके, ठीक है। शांत रहना इज कामिंग डाउन, दैट इज थर्ड थिंग, दैट इज अ वेरी गुड थिंग इफ वन कैन डू इट, एंड दिस ओनली राजयोगीज कैन डू। आई कैन क्लेम दैट, शिलू दीदी, आई एम रियली वेरी प्राउड ऑफ राजयोगा एंड दीदीज टीचिंग, ओनली राजयोगा कैन डू। आज तक सन्यासी भी नहीं कर सके, वो भी क्रोध अग्नि में जल जाते हैं, पर कामिंग ओनली जो तपस्वी है वही कर सकते हैं, और वो भी जिन्होंने राजयोग प्रॉपरली फॉलो किया है। पर सप्रेसिंग, यस, दीज आर द टू वेज, दो तरीके से लोग एक्सप्रेस करते हैं, इधर एक्सप्रेसिंग और सप्रेसिंग। एक्सप्रेस कर देते हैं सीधा सामने, तो लड़ाई हो जाती है, झगड़ा हो जाता है, बढ़ जाते हैं, खून खराबे हो जाते हैं, या फिर सप्रेस कर लेते हैं। हाँ, टू सम एक्सटेंट, जैसे साहब ने कहा कि सप्रेस कर लेना चाहिए उस टाइम, फॉर ए शॉर्ट टाइम। हाँ, वो सिर्फ राजयोग हमें सिखा सकता है कि उसे एक्सेप्ट ही ना करो, दैट्स राइट, तभी तो हम काम रह जाएंगे ना। बिल्कुल ठीक कहा, बिल्कुल ठीक कहा आपने। हमारे पास ऐसा कोई मेथड नहीं है कि उसको हम न्यूट्रलाइज कर ले तो हम दूसरों पे निकाल देते हैं, कभी ना कभी निकलता है, या बॉस पे निकलता है, या हमारे, यस, सोच सोच के डिप्रेस भी हो जाते हैं, डॉक्टर राधेश्याम भाई ने कहा। और ये भी बड़ा अच्छा बताया कि वो स्टीम, प्रेशर कुकर की तरह, स्टीम की तरह फिर फटता भी है, बिल्कुल ठीक कहा। तो इसलिए इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम समझदार बने और अपने एंगर को, नेक्स्ट प्लीज, अपने गुस्से को कैसे डील करना है। तो बहुत नेचुरल वे जो है, जो आमतौर पर नेचुरल अप्रोच है, वो तो है एक्सप्रेस करना, और एक्सप्रेस करना भी चाहिए, बट एक्सप्रेस कब करना है जो सबने बताया वो बहुत इंपॉर्टेंट है। परंतु जहां तक, और एक्सप्रेस कैसे करना है, सो किसी ने मुझे बात हुई थी तो बताया, बहुत अच्छी बात, हाँ, मैं मीरा बहन से ही बात कर रही थी, तो बहुत अच्छी बात बताई, बोली कि एक सिस्टर को नर्स के लिए कंप्लेंट होगी एक पेशेंट की, कि रात को उसने मुझे देखा ही नहीं। मतलब पेशेंट ने कंप्लेंट करी कि रात को मेरे को एक बार भी नहीं देखा, तो हाई लेवल में कंप्लेंट चली गई वो नर्स के अगेंस्ट। तो जब उस नर्स को पता लगा कि पेशेंट ने मेरी कंप्लेंट करी है और कहा मैंने पूरी रात देखा ही नहीं, उसके मन में आया कि ये तो सो रही थी, मैं दो बार गई, पेशेंट सो रही थी अपने रूम के अंदर, तो मैं इसको तो देखा था, तो अब उससे लगा मैं क्या करूं। तो बड़ा अच्छा उसने तरीका अपनाया। जब उसके नेक्स्ट नाइट ड्यूटी आई तो वो गई, जैसे ड्यूटी शुरू हुई, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। फिर 5 मिनट बीते, फिर गई, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। फिर 5 मिनट बीते, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। एवरी 5 मिनट्स पूरी रात, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। अल्टीमेटली उसने कहा, प्लीज मुझे सोने दीजिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सो अब गुस्सा एक्सप्रेस कैसे हुआ, वो बॉस को जाके कह सकती थी, एक्सप्लेन कर सकती थी कि मैंने पूरी नाइट में इसको देखा है, पर कुछ नहीं। सो दिस इज अनदर वे ऑफ एक्सप्रेसिंग। उसने एक्सप्रेस तो किया, पर कैसे किया, अब वो कभी कंप्लेन नहीं करेगी। सो दिस आर इंटरेस्टिंग वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग। जैसे किसी ने बताया था, जापान में अगर गुस्सा आ जाता है तो वो ज्यादा काम करते हैं, सो देट उनका माल और बन जाए और बन जाए और बन जाए, और बॉस को बड़ी मुश्किल होगी कि कैसे निकालेगा वो। तो इस तरह से भी बहुत सारे मेथड्स हैं आप गुस्से को एक्सप्रेस करने के। खैर, अपनी स्थिति नहीं डिस्टर्ब करें, वो तो हमें राजयोगा ही सिखाता है। तो दे आर असर्टिव वेज, दे आर एग्रेसिव वेज, एंड देर अनएक्सप्रेस्ड एंगर। उस समय तो हम सप्रेस कर लेते हैं कि कल इसको एक्सप्रेस करेंगे, पर कई बार वो एक्सप्रेस करने का मौका ही नहीं आता है। बॉस हमसे बहुत नाराज है, या हमारा सीनियर हमसे बहुत नाराज है, या ऐसा नहीं आता, तो वो जो अनएक्सप्रेस्ड एंगर है वो बहुत हार्मफुल है। या तो हम उनको योगी बना दें और उनका ये निकाल दें उनका गुस्सा, वो ऑटोमेटिकली वो परमात्मा के ऊपर आउटलेट कर सकें, पर अगर नहीं है तो अनएक्सप्रेस्ड एंगर इज वेरी डेंजरस। हार्ट अटैक, हाई ब्लड प्रेशर, ऑल टाइप्स, यहां तक कि देखा गया अंदर ही अंदर जो चलता रहता है, द एंगर इन इज द वर्स्ट। एंगर आउट तो चलो ठीक है, दूसरों को नुकसान देगा, पर एंगर इन तो हमको भी बहुत ज्यादा नुकसान देता है, और सब प्रकार की बीमारियां वो एंगर इन कर रहा है। सारे हार्मोनल चेंजेस जो हो रहे हैं वो बिकॉज हम गुस्से को अंदर ले लेते हैं। नेक्स्ट, सप्रेस, इट्स ऑलमोस्ट सप्रेस, क्योंकि हमने सोचा था कल एक्सप्रेस कर लेंगे, परसों कर लेंगे, फिर बताएंगे, तो वो पाइल अप होता रहता है। नेक्स्ट, सो नाउ द क्वेश्चन कम्स, हाउ टू मैनेज योर एंगर, एंड व्हाई शुड वी मैनेज आवर एंगर, दैट वी ऑल नो, बिकॉज इट इज आवर ओन साइकोबायोग्राफी। ऐसा नहीं कि हम एंगर को कहें से हेल्दी इमोशन और इस एसेंशियल, इट अफेक्ट्स। और उसके साथ ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बेसिकली एंगर के अंदर, अगर किसी को एंगर मीन्स कोई बात से अंदर अपील ना करना, बेसिकली तो ये हुआ कि मुझे वो बात अपील नहीं की, या मैं उससे नाराज हो गई, या मुझे अच्छा नहीं लगा, मेरे अंदर एक नेगेटिव फीलिंग आई, तो उससे एक नेचुरल फिनोमिना है, क्योंकि वो व्यक्ति जो बहुत ही कमजोर था वो भी तोड़फोड़ कर रहा है। हम कहते हैं ना, अभी किसी ने कहा था, व्हेन वी आर फिजिकली वीक तो भी गुस्सा आता है, वैसे फिजिकली वीक है, चल नहीं सकते हैं, पर टीवी तोड़ सकते हैं, इसका मतलब हमारे अंदर एनर्जी गुस्से से आई है। तो अगर हम गुस्सा गुस्सा करते रहेंगे तो हमारी एनर्जी कितनी लूज हो रही है। वही मेरी एनर्जी है जो मैं किसी और काम में यूज कर सकता था, पर आज वो मेरी एनर्जी लूज हो रही है। सो इससे हमारे अंदर जो बिटरनेस इम्बाइव हो रही है, हमारा कड़वापन हमारे अंदर आ रहा है, आज या कल कभी तो वो कड़वापन बाहर आ जाएगा। सो एंगर से मुझे अपना कितना नुकसान हो रहा है, वायलेंस एंड ग्लोबल टेररिज्म, ये तो हम जानते ही हैं, तो डेफिनेटली इस क्रोध को मैनेज करना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट, ओके, सो इफेक्ट्स ऑन द बॉडी, हेल्थ के ऊपर क्या इफेक्ट होते हैं, मैं समझती हूँ कुछ कोई भी इसको बता सकता है, जो भी मेडिकल उससे कंसर्न है, डॉक्टर्स बैठे हैं, इसके हमारे शरीर पे कितने इफेक्ट होते हैं गुस्से के, कोई बताएगा? 80% क्या क्या होते हैं, कौन कौन सा ऑर्गन इसमें इन्वॉल्व हो जाता है? ओके, सारे पार्ट, कोई भी ऐसा पार्ट नहीं है बॉडी का जो गुस्से से इफेक्ट ना होता हो। यहां तक कि अभी रिसेंटली मैंने देखा कि आप शायद जानते होंगे एओर्टिक डिसेक्शन, अगर आपको नहीं मालूम हो ये वर्ड, ये एक बीमारी है जो कि हार्ट की ट्रीटमेंट है, पर एओर्टिक डिसेक्शन की ट्रीटमेंट नहीं है। अगर आप सब थोड़ा बहुत जानते हो हाई ब्लड प्रेशर के बारे में, कि हाई ब्लड प्रेशर में एथेरोस्क्लेरोटिक टाइप के चेंजेस होते हैं हमारे एओर्टा के अंदर, थोड़ा सा साइंटिफिक बता रही हूँ, वो जो बेसिकली हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर में वन ऑफ द कॉजेज इज कि जो पैथोलॉजी हो रही है वो एओर्टा की वॉल थिकनिंग हो रही है, आर्टरीज की वॉल थिकनिंग, इसको बोलते हैं एथेरोस्क्लेरोटिक चेंजेस। और क्या होता है, वो मोटा थिक वॉल हो गई है उसकी एओर्टा की जिसमें से खून जा रहा है, तो सडनली अगर ब्लड प्रेशर हाई हो गया, जैसे हम कहते हैं गुस्से में 300 तक ब्लड प्रेशर जा सकता है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कैन गो अप टू 300 मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी जो कि नॉर्मल 120 होता है, तो इतने में सडन जब जाता है तो वो क्योंकि बहुत प्रेशर में होता है तो वो वॉल को डिसेक्ट कर लेता है, यानी दो में डिवाइड कर लेता है, उसकी इंटीमा सेपरेट कर लेता और वो उन दोनों के बीच में चला जाता है, इसको बोलते हैं एओर्टिक डिसेक्शन, उसकी वॉल का डिसेक्शन हो गया। तो जब इफेक्टिव ब्लड फ्लो था वो एओर्टा से ना जाके उसकी वॉल के थ्रू जाता है, और ऐसी बीमारी का हार्ट अटैक का ट्रीटमेंट है पर एओर्टिक डिसेक्शन का ट्रीटमेंट नहीं है। अगर है तो बहुत ही कोई सीनियर सर्जन जो बहुत एक्सपीरियंस सर्जन है वो पूरा का पूरा एओर्टा को रिप्लेस करता है विद एन आर्टिफिशियल ग्राफ्ट, और वो भी कई बार ऐसी जगह पे होता है। रिसेंटली एक पेशेंट था जिसका किडनी के लेवल पे था, तो नहीं किडनी की भी सप्लाई खत्म हो गई क्योंकि एओर्टिक डिसेक्शन वहां हो गया, वो सारा का सारा खून उसके वॉल में जा रहा है, एओर्टा के अंदर से नहीं जा रहा है और स्पीड से जाता है बहुत, क्योंकि एक लो रेजिस्टेंस ट्रैक बन जाता है वो। तो ऐसी सिचुएशन में अभी हमने रिसेंटली एक स्टेंट लगाया है जिसका कॉस्ट हुआ है 2.5 लाख, और वो भी कितना इफेक्टिव रहेगा मालूम नहीं क्योंकि इसके ऊपर एओर्टिक डिसेक्शन पर बहुत रिसर्च हो रही है, पर मेन थिंग होता है कि वो हाई ब्लड प्रेशर टू मच हाई होने से एक साइड ट्रैक वॉल के अंदर बन जाता है, यानी ऐसी तक बीमारियां जो हमारे सिर्फ गुस्सा करने से हो जाती हैं। सिंपली हाई ब्लड प्रेशर कहना तो बहुत ईजी है, पर हाई ब्लड प्रेशर के नतीजे क्या है, हार्ट अटैक तो आप जानते हैं, ब्रेन में स्ट्रोक आप जानते हैं, एक बार पैरालिसिस हो जाए हम तो गए पर सारा परिवार क्या। सो ऐसी वाली बीमारियां साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस क्या, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल अल्सरेटिव कोलाइटिस इस समय बहुत कॉमन बीमारी है पेट की, और छोटी छोटी बात में गुस्सा करते हैं और अंदर कॉलन में अल्सर्स बन जाते हैं। तो इस तरह से जब हम बात करते हैं स्वास्थ्य के ऊपर तो बहुत बीमारियां हैं जो सिर्फ उसका मेन कारण है छोटी छोटी बात में शॉर्ट टेम्परामेंटल होना। नेक्स्ट प्लीज। तो अभी तक वी कैन समराइज नाउ, इट इज जस्ट समराइजेशन ऑफ द होल थिंग कि हमारा गुस्सा आया क्यों, चाहे वो किसी प्रकार का स्ट्रेस था, चाहे वो कोई स्टिमुलाई था या कोई इन्वायरमेंटल में चेंज आया, जो अभी सभी बता रहे थे कि उसको कोप अप नहीं कर पाए, ऐसा कोई चेंज जो हम नहीं कोप अप कर पाए हैं, या वी आर टाइम प्रेस्ड, या कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, कोई हमारी कोपिंग डिफिकल्टीज हैं, किसी भी प्रकार का जो हमारे अंदर हेल्पलेसनेस फीलिंग हुई, या वी आर विक्टिमाइज, या वी आर ओवरवर्क, कोई भी प्रकार का कारण हुआ, हमें गुस्सा तो आया, दैट इज आएगा इस सिचुएशन के अंदर, पर उसके नतीजे उसका रिस्पॉन्स हमारे पूरे सिस्टम ऑफ बॉडी, न केवल अपना पर्सनल पर सोशल रिलेशन एवरीबॉडी, दे आर बिग सर्कल्स, एंड इतना भी गुस्सा आया किसी को कि वो कहता है अब तो मैं दुनिया को खत्म करके ही दिखाऊंगा, सो ऐसा वाला गुस्सा भी हो जाता है, अब तो मैं मार के ही दिखाऊंगा। तभी आजकल आप केस देखते हैं वो टीवी में दिखाते हैं, वो बच्चे ने माँ को छुरा घोंप दिया, सो दिस इज ऑल गुस्सा। तो काफी हो गया गुस्से के ऊपर, अब आगे चलते हैं नेक्स्ट। ओके, ये बात इसको एक मिनट बंद कर दीजिए, इसको स्टॉप इट, इसको बंद कर दीजिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो अभी हम डील करने वाले हैं वो ये है कि अगर हमारा बॉस हमारे पे गुस्सा करता है, या दूसरी कॉमन प्रॉब्लम है जो बच्चे हमारे पे गुस्सा करते हैं, पेरेंट्स के ऊपर बच्चे गुस्सा कर रहे हैं, छोटी छोटी बात पे कहेंगे आपको आता नहीं है, आपको पता नहीं है, आपको मालूम नहीं है, तो ऐसी वाली बातों पे आप इन चीजों को कैसे टैकल करो, और बेसिकली वो उनकी फीलिंग्स को हम कैसे समझें, इसके लिए कोई बता सकता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आज पूरे उसके अंदर जो भी साइकोलॉजिस्ट है, मोस्ट ऑफ द पीपल दे गो फॉर कंसल्टेशन कि हमें समझ नहीं आता हम बच्चों को कैसे टैकल करें, या बहुत लोग कहते हैं मेरा बॉस को जो स्ट्रेस है गुस्सा है मैं उसको कैसे मैनेज करूं। तो उसके लिए बताए। ओके,
नहीं आता तो आप बताइए कि कैसे आना चाहिए। अच्छा, अगर वो आपको कहे मुझसे बात नहीं करो, आप चुप हो जाओ, तो आप क्या जवाब देंगे? और बहुत सारे बच्चे ये कहते हैं,
थोड़ी देर में
बात
कर लेगा, ओके
ओके, टाइम दीजिए, सिट विद द चाइल्ड, ओके, बिल्कुल ठीक है। और कुछ? बी फ्रेंडली विद चाइल्ड, वेरी गुड। और बच्चे स्टे देते रहे, रिप्लाई देते रहे। अगर वो बिल्कुल ये करे मुझे पढ़ने के लिए नहीं कहो, तो उसे नहीं कहिए, वो समझाते हो तो उसे गुस्सा करता है, चले जाओ इस कमरे से। बहुत कॉमन प्रॉब्लम, सभी लोग हमारे पास इसीलिए आते हैं, क्योंकि चले जाओ, आपको नहीं पता है, मेरे से बात नहीं करो, मुझे टीवी देखने दो। आई डोंट नो आपके साथ है कि नहीं, बट आमतौर पर जनता की ये प्रॉब्लम है। बोले डिस्टर्ब कर दिया, मेरा सीरियल आ रहा था, ऐसे बोलते हैं वो। हाँ कम करो कम करो बिल्कुल कम करो कम करो बिल्कुल ठीक कहा आपने। इस सब पर वो वही खाते हैं, उनको उनको मैकडॉनल्ड का पिज्जा चाहिए, उनको खाने जगह का बर्गर चाहिए, आप क्या कर सकते हैं? तो ये प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक है आपकी। तो इसमें मैं आपको नेक्स्ट बता, ये बिल्कुल ठीक है, वास्तव में बच्चे बहुत समझदार हैं और हमारा बॉस भी बहुत समझदार है, और ये हमारे टीचर है। कहा जाता है ना, चाइल्ड इज द मैन, चाइल्ड इज द फादर। अब ये बताइए, बहुत अच्छी नेक्स्ट बताइए, ये बहुत अच्छी एक साइकोलॉजिकल एनालिसिस हुआ था, बहुत अच्छा, ये मैंने भी उसमें से डाउनलोड किया कंप्यूटर से, बहुत अच्छी बात थी ये वाली, कि आप ये देखिए कि जब आपकी फीलिंग क्या है, अपनी फीलिंग को एनालाइज करो। बहुत अच्छे से उसने बहुत डिटेल में इसको बताया है कि जब किसी ने जिस तरह से व्यवहार किया उसमें आपको नाराजगी हुई, आपको पसंद नहीं आया, या आप उस समय इरिटेट हो गए, तो इसका क्या मतलब है? व्हाट इज चाइल्ड साइकोलॉजी और व्हाट इज योर बॉस, आई मीन जो भी आपके सामने जिससे आप नाराज हो रहे हैं, इरिटेट हो रहे हैं, उसकी साइकोलॉजी समझो। बेसिकली ही वॉन्ट्स टू, उसका पर्पज क्या है? ही वॉन्ट्स टू सीक योर अटेंशन। बड़ा अच्छे से उसने एनालाइज किया है, बहुत बड़े डिटेल्स है इसके, मैं शॉर्ट में बता रही हूँ। दिस इज एन इंडिकेशन कि जब आपको अंदर गुस्सा आता है उसको देख के कि ये मुझे इरिटेट कर रहा है, तो आप समझ लीजिए कि उसका पर्पज क्या है। हिज पर्पज इज टू गेट योर अटेंशन। थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट, अब सेकेंड फीलिंग आपकी क्या है? इफ यू फील डिस्करेज और हेल्पलेस, जैसे मुझे बॉस ने बड़ी बुरी तरह डांट दिया, मेरा कोई कसूर नहीं था और मुझे बड़ा हेल्पलेस फील हुआ, मैं एकदम डिस्करेज हो गया अपनी जिंदगी में, इसका मतलब उसका पर्पज क्या था? हिज पर्पज वॉज टू विदड्रॉ यू फ्रॉम दैट पर्टिकुलर टास्क। जैसे उसको, वो नहीं चाहता था कि मैं ये काम करूं। नहीं, बहुत गहन बात है ये वाली, वो वाली गहन नहीं जो डॉक्टर सचिन कहते हैं कि बहुत गंभीर विषय है, तो मैं आगे नहीं बोलूंगा, परंतु वो डिफरेंट बात है, वो तो हंसाने के लिए है। परंतु ये जो गहन इश्यू है कि कई बार दूसरा व्यक्ति हमें क्या कहना चाहता है अपने गुस्से से, उसके गुस्से से समझिए अपने आप को, कि जब मेरे अंदर फीलिंग आ गई है तो उसको समझिए कि उसका पर्पज क्या था, कि वो चाहता है कि मैं उस टास्क जिसमें मैं था उसमें अपने आप को विदड्रॉ करूं। इस तरह की तक की मुझे एनालाइज करना होगा। और भी इसके साथ एक और नेक्स्ट होगा, इससे पिछला वाला बताए। ओके, इफ यू फील हर्ट, किसने गुस्सा किया और आप हर्ट हुए, को लगा बड़ा दुख पहुंचा उसकी बात से, दैट मीन्स हिज पर्पज वॉज टू टेक रिवेंज। अब समझ जाइए उसके अकॉर्डिंगली यू एक्ट। ये बहुत हम लोग क्या करते हैं, हम एक्ट करते हैं उसको उस तरह से, हम कोशिश करते हैं सप्रेस तो कर रहे हैं अपने एंगर को, पर उस सप्रेस को मुझे एक्सप्रेस कैसे करना है, किस तरह से करना है, अगर मैं उस व्यक्ति को समझती हूँ तो। अगर मेरे को हर्ट हुआ है, इसका मतलब ये था कि उसका पर्पज बदला लेने का था और उसने बदला ले लिया, मैं शांत हूं। अब मुझे आगे कैसे करना है ताकि वो फिर से बदले की भावना में ना आ जाए। और इफ यू फील, ये हो गया, इससे पहले वाला एक और रह गया होगा, शायद हो गए सारे, एक और रह गया है। हाँ हाँ, इससे प्रीवियस नहीं बताया है। ओके मीशे वाला, इफ यू आर पावरलेस और आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते, मान लीजिए मेरे पर बहुत गुस्सा किया और मैं एकदम आउट ऑफ कंट्रोल हो गई, बिल्कुल लगा मुझे कि मैं आउट ऑफ कंट्रोल हो गई और मैं ऐसा लग रहा है कि मैं बिल्कुल पावरलेस हो गई और मेरे हाथ में कुछ भी नहीं रहा है, तो इसका मतलब उसका पर्पज आप समझिए क्या था, उसने इतना गुस्सा क्यों किया, बिकॉज हिज पर्पज वॉज टू गेन पावर एंड कंट्रोल ऑन यू। तभी कई लोग कहते हैं, अभी भी गिरीश भाई ने कहा था, कुछ लोग सैडिस्ट होते हैं, कुछ बॉस अपने आप को बॉस दिखाना चाहते हैं आज के जमाने में, क्योंकि हमेशा वही व्यक्ति गुस्सा करता है जो हिमसेल्फ इज नॉट एन अथॉरिटी इन हिज फील्ड, तो वो गुस्सा करके अपने आप को बॉस बनाएगा। जैसे दीदी भी बताती है लीडरशिप और उसमें, क्योंकि हम शो करना चाहते हैं आई एम द बॉस, यू शुड रिस्पेक्ट मी, तो मैं वेरियस तरीके यूज करता हूँ, और मैं बहुत जल्दी नाराज हो रही हूँ, बड़े दुखी हो रही हूँ, घर जाकर बच्चों को डांट लगा रही हूँ कि ये हुआ वो हुआ, पर मुझे ये देखना है कि उसकी बेसिकली उसका पर्पज क्या था और अकॉर्डिंगली मैं अपने आप को कैसे काम डाउन करूं और आगे के लिए मैं कैसे अपने आप को तैयार कर लूं। इसके ऊपर बहुत बड़े बड़े एनालिसिस हैं कि आप व्यक्ति को कैसे समझिए और अपनी फीलिंग्स के द्वारा आप समझ जाइए कि दूसरा कहां तक आपके लेवल में आपको हर्ट करना चाहता था और क्यों करना चाहता था, एंड अकॉर्डिंगली यू एक्ट। क्योंकि वो तो कहते हैं कि उस तरह से आप अपने आप को शांत करो, पर राजयोग हमें मदद करता है इसमें, क्योंकि हमारा तो बाबा ने सब एक्सप्लेन कर दिया है। नेक्स्ट, अब राजयोग कैसे मदद करता है ये आप सबके बहुत अच्छे अच्छे अनुभव हैं, परंतु जब हम दुनिया के सामने बात करते हैं तो हम सिंपली वी कैनॉट कमांड राजयोग, वो कहेंगे राजयोग ही क्यों, कोई और क्यों नहीं। तो जब हम किसी के आगे स्टार्ट करते हैं ऐसा वाला टॉपिक, तो हम हमेशा ये करते हैं कि इसमें मेडिटेशन हमको हेल्प करता है, इट इज अ शील्ड, ये हमको प्रोटेक्ट करता है, जो कहा गया कि हम रिसीव ही ना करें उस गुस्से को, और रिसीव करें तो उसका मतलब समझे कि वो कहना क्या चाहता है। पहले अपने को उस समय सप्रेस करना है कि मैं एक्सप्रेस ना करूं, अग्नि को ना बढ़ाऊं, तो उस समय मुझे क्या करना होगा। तो वेरियस स्टेप्स ऑफ मेडिटेशन को आप एक्सप्लेन करिए, 5 मिनट लगाइए उनको बताइए कि वन थिंग इज पॉइंट मेडिटेशन, कि अगर आपको बहुत गुस्सा आ रहा है तो आप एक दीवार पे पॉइंट ले लीजिए और धीरे धीरे उस पर कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश करिए, और व्हाट यू कैन डू इज यू कैन ड्रॉ ए सर्कल, बड़ा सर्कल, छोटा सर्कल, उससे छोटा सर्कल, उससे छोटा, उससे छोटा, अल्टीमेटली 10 सर्कल के बाद एक बिंदु, अपने ऑफिस में कागज में भी ड्रॉ कर सकते हैं, बड़ा सर्कल, छोटा 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 छोटा, अल्टीमेटली बिंदु, सबके बीच में आप बैठे हैं, आप किसी को बताना भी नहीं चाहते हैं कि आप अंदर गए थे तो बॉस ने क्या किया, तो आप एक कागज पे बनाते रहिए उसको आउटसाइड देखते रहिए, अल्टीमेटली धीरे 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 आप उस पॉइंट पे आ जाएंगे, तो वो जो बात चल रही थी वो आपको भूलेगी। और उसके बाद ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, मान लीजिए आप बॉस के कमरे से निकले हैं और बॉस ने अच्छे से धमाका कर दिया था आपके ऊपर, ये काम नहीं हुआ वो काम नहीं हुआ, तो निकलते निकलते बाहर आते आते डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करते आइए, क्योंकि और कुछ तो है नहीं आपके पास, इमीडिएटली आप बर्स्ट भी नहीं कर सकते हैं, तो यू कैन डू डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज, इज गुड फॉर यू ओनली, क्योंकि जो मेरा रेस्पिरेटरी रेट बढ़ना है, हार्ट रेट बढ़ना है, एटलीस्ट आई एम कमिंग टू माई कॉन्शियस कि मुझे अपने को डीप ब्रीदिंग करके थोड़ा सा रिलीफ करना है, ये तो कर सकते हैं, कोई भी कर सकते हैं। और उसके बाद है फिजिकल योगा, जो शायद ऑफिस में तो नहीं हो सकता है जहां पे इमीडिएटली बात हुई होती है, पर एक नेचुरल अगर कोई फिजिकल योगा की आदत बना लेता है या एक एक्सरसाइजेस की आदत बनाता है, मॉर्निंग वॉक या कोई भी ऐसी चीज आदत बनी होती है, तो इससे जो हमें रिलैक्सेशन मिलता है, हमने तो रिलैक्सेशन के बहुत फायदे आगे चल के भी देखने हैं कि कितने फायदे हैं रिलैक्सेशन के, पर फिजिकल योगा इटसेल्फ इज अ रिलैक्सेशन। अब कई लोग कोल्ड वाटर, आप ठंडा पानी पी सकते हैं, तो जब फिजिकल योगा आप वहां कैसे करेंगे ऑफिस के अंदर, मुश्किल हो जाता है। मैं आपको बोलूं ऑफिस में आप पद्मासन में बैठ जाइए, या ऑफिस के अंदर आप गौमुखासन में बैठ जाइए, शवासन में लेट जाइए, जैसे डॉक्टर गिरीश भाई ने कहा कि किसने कहा कि आप कभी लेटते नहीं थे और उस दिन आप लेट गए और आपको बॉस उसी दिन ही आ गया, तो हो गया सारा काम, तो इसीलिए आप क्या करें और कुछ नहीं, तो सिंपल एक्सरसाइजेस, गो टू योर टॉयलेट, उसके बाहर थोड़ी सी जगह होती है, उसमें कोई भी सिंपल एक्सरसाइजेस जो भी आप करना चाहते हैं, ऐसे ऐसे कुछ भी जो आप करना चाहते हैं उस समय कर लीजिए, क्योंकि जो एनर्जी स्टोर हो गई है, जो बर्स्ट कर लेगी, एटलीस्ट इट विल पास इनटू द, कुछ तो होएगा रिलीफ। यानी आम जनता को आप कुछ भी बताए, अगर सीधे मेडिटेशन कह देंगे, मेडिटेशन करेंगे तो और ही हेडेक हो जाएगी, उनको आता तो है ही नहीं मेडिटेशन, मेडिटेशन तो वो कर सकता है जिसको रोज की प्रैक्टिस होती है। कई बार प्रैक्टिस करने वालों को भी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि उसमें मेडिटेशन मुश्किल हो जाता है और ही सिर भारी हो जाता है। तो कुछ ना कुछ और भी तरीका अपनाइए, जो एनर्जी मेरे अंदर आई है उस नेगेटिव वार्तालाप से उसको आप निकालिए। और निकालने का तरीका, डीप ब्रीदिंग करिए, सांस के थ्रू निकालिए, मुंह के थ्रू, या कोई भी तरीके की एक्सरसाइज। हम लोग के ऑफिस में मैंने बहुत बार देखा है लोग खड़े खड़े ऐसे करते रहेंगे ताकि मेरे जॉइंट्स रिलीफ हो जाए। बैठे बैठे आप बैठे हुए हैं और टांगे ऊपर उठा रहे हैं, कुछ तो करिए। अब वो भी नहीं कर सकते हैं और सब लोग आपके बीच में हैं, टेबल इधर है, ऑफिस है, तो और कुछ नहीं तो टेबल के नीचे दिख नहीं रहा है। आप अपने हाथों को जितना हो सकता है जोर से पूरी एनर्जी निकालने की कोशिश कर दीजिए ताकि एनर्जी निकल जाए, कैसे भी निकले वो निकले जो भरी पड़ी है, ऐसे करिए। क्योंकि इसमें बहुत सारे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स जो आपके हाथ में होते हैं वो दब जाते हैं। कोशिश करिए निकालने की, सारी एनर्जी निकल जाएगी, सारा गुस्सा यहीं निकल जाएगा। एक मैंने लास्ट टाइम भी तरीका बताया था कि और कुछ नहीं कर सकते हैं, बैठे बैठे दांतों को घींच लीजिए, क्लोज योर जॉज, अच्छे से दांत बंद कर लीजिए और यहाँ पे चिन पे अपना थंब रखिए और इसे खोलने की कोशिश करिए। दांत बिल्कुल बंद है, जॉ बिल्कुल क्लोज्ड है और अपना अंगूठा यहाँ रख के, थंब रख के उसे खोलने की कोशिश करिए। बहुत मुश्किल काम होता है पर सारी एनर्जी जो भरी हुई थी उसको फटाफट फ्लो करा दीजिए ताकि वो बाहर आ जाए और आपका गुस्सा जितना हो सके वो रिलीफ होए। ऑफकोर्स डिस्ट्रैक्शन तो देना ही है। सो कुछ ऐसे वाले मेथड हैं, पर सबसे अच्छा मेथड है मेंटल योगा एंड स्पिरिचुअल योगा। मेंटल योगा भी बहुत लोग करते हैं, जिससे आप कहेंगे ये ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन, जिसमें वो ओम ओम या कोई भी वर्ड लेके करते हैं, ठीक है, अच्छी बात है, डिस्ट्रैक्शन हो जाता है, पर स्पिरिचुअल योगा इज द बेस्ट। क्योंकि जैसे पहले बताया कि स्पिरिचुअल वीकनेस है, गुस्सा आ जाना भी, जैसे बहुत लोगों ने अपना अपना बताया, पेशेंस की कमी है, धैर्यता की कमी है, किसी की बात सुनने की कमी है, तो बहुत सारी शक्तियों की जो कमी है, जो हमारी स्पिरिचुअल पावर्स हैं, तो स्पिरिचुअल वीकनेस है, देन वाई नॉट टू डू ए स्पिरिचुअल मेडिटेशन। और उसमें राजयोगा मेडिटेशन इज बेसिकली ए स्पिरिचुअल मेडिटेशन, जो हमारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी करता है और स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट भी करता है। और डॉक्टर साहब ने बताया कि कैसे उनका ज्ञान में चलने से, योग ज्ञान में चलना मीन्स योग को अपने जीवन में धारण करने से हमारे अंदर क्रोध धीरे धीरे ऑटोमेटिकली खत्म हो जाता है। और जो मेथड हमने बताया है उसमें यह है कि आप उस समय क्रोध को खत्म कर रहे हैं, क्रोध आ गया है उसको रिलीज कर रहे हैं पर उसको रिप्लेस नहीं कर रहे हैं। मेंटल मेडिटेशन ठीक है, आप ओ का मंत्र जाप कर लेते हैं पर इसमें ये प्यार से भरा नहीं है, रिप्लेस नहीं हुआ है। पर स्पिरिचुअल मेडिटेशन जो बेसिकली राजयोगा है, स्पिरिचुअल मेडिटेशन तो बहुत लोग सिखाते हैं पर राजयोगा में, क्योंकि इसमें परमात्म प्यार से भरपूर है, तो उस गुस्से के स्थान पर आप परमात्म प्यार को भर रहे हैं। जैसे कि पहले भी एक बार बात हुई थी कि आपके पास दो बॉल्स हैं, एक के अंदर परफ्यूम भरा है, एक के अंदर कीचड़ भरा है, पंक्चर करेंगे तो कीचड़ वाले में से कीचड़ निकलेगा और परफ्यूम वाले में से परफ्यूम। तो ऐसे ही जब हमारे अंदर ईश्वरीय प्यार भरा है तो वो हमारे अंदर शांति भरी है, जो ईश्वर से मिली है शांति के सागर में, कोई कितना भी हमें पिंच करने की कोशिश करेगा हमारे अंदर से वही निकलेगा। पर इसके लिए हमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है और आप सबका एक्सपीरियंस है अभी हम गुस्से वाले लोगों को कैसे डील करते हैं। जितना वो गुस्सा करते हैं उतने हम शांत हो जाते हैं, वो जोर से बोलते हैं हम और प्यार से बोलते हैं, वो और जोर से बोलते हैं हम और प्यार से बोलते हैं, उसकी जितनी ऊंचा उनका बढ़ता है हम उतने नीचे हो जाते हैं, क्योंकि अब हमें प्रॉपर राजयोग आ गया और हम उस ईश्वरीय प्रेम से भर चुके हैं। तो ये है हमारा मेडिटेशन। तो इसलिए सबके बीच में हम ओपनली कह सकते हैं दिस इज राजयोग मेडिटेशन, और इसका मुझे भी अनुभव है और हो सकता है आपकी सभा में और बहुत बैठे होंगे जिनको इसका अनुभव है। अगर आप मेडिटेशन करते हैं, सब और मेडिटेशन करते हैं, तो आप राजयोग कुछ दिन करके देख लीजिए और आप अनुभव करेंगे कि कैसे आपका क्रोध खत्म होता जा रहा है। हम ऐसे पब्लिक में चैलेंज कर सकते हैं क्योंकि ये हमारा अनुभव है। ओके, नेक्स्ट। तो राजयोगा मेडिटेशन के फायदे तो हम सबको पता है, आई नीड नॉट स्ट्रेस ऑन दिस, उनको पता है कैसे वो खत्म कर रहा है। अगला बता दीजिए। खत्म करते हैं, टाइम हो गया है. सो वी कैन ऑल टॉक, इसी में ही हम राजयोग के बारे में, राजयोग क्या है और राजयोग से कैसे हमारे अंदर जो हमारी इनेट क्वालिटीज जो आत्मा की है वो ऑटोमेटिकली आनी शुरू हो जाती हैं, और अगर वो हमारे गुस्से में एनर्जी फ्लो हो भी जाती है तो ईश्वर के थ्रू हम उसको भर लेते हैं, क्योंकि राजयोग सारी बात हम उसमें यहाँ राजयोग के ऊपर 10 मिनट बता सकते हैं कि कैसे राजयोग में हमारा एक लवफुल कनेक्शन है, और इस स्पिरिचुअलिटी के बेसिस पर हम अनप्लेजेंट सिचुएशन में भी प्लेजेंटनेस फील कर सकते हैं, और अभी मनसा सेवा पे भी हम बात कर सकते हैं. नेक्स्ट प्लीज, आई थिंक वी शुड स्टॉप इट नाउ. ओके, टिप्स एंड फैक्ट्स टू अवॉइड एंगर, ये हम आम जनता को बता सकते हैं कि किस तरह से हमें करना है. वी हैव, हमें एक शुभ चिंतक वाला गुण अपना लेना है अपने जीवन में. कितना भी कोई गुस्सा करे इसका मतलब वो वीक है, कमजोर है, हमें उसे शुभ चिंतन देना है, उसका नेगेटिव चिंतन है. और दूसरा है कि हम कहीं ना कहीं 10 मिनट के लिए मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक, कुछ भी करते रहें, कुछ फिजिकल एक्सरसाइजेस जरूर करते रहें, और जिसका हमने लिखा है एज ए नेवर लॉफ ऑन पीपल, जैसे कोई बैड मूड में है तो हम उसके ऊपर हंस देते हैं तो वो गुस्से में आ जाता है. तो इसलिए ये ना बार बार कहें तुम्हारा मूड खराब है, तुम्हारा ये है, उसको जताने की कोई जरूरत नहीं है. तो अगर आप हेल्प कर सकते हैं तो ठीक है, पर बार बार उसे ना कहिए कि आपका मूड खराब है, क्योंकि आप उसमें गुस्सा ला रहे हैं. तो एक ये मैंने जो लिखा है, ईट फ्रूट एवरी डे, आई थिंक इसका रीजन आप सबको मालूम होगा, है ना? सब जानते हैं ना क्यों हमें फल खाना चाहिए? कोई बता सकता है उसके गुस्से से क्या कनेक्शन है? चाहे सब्जियां हैं वो खाएंगे तो एटलीस्ट जो हमारे अंदर स्ट्रेस के कारण ऑक्सीडेंट्स पैदा हुए हैं बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन मेटाबोलाइट्स विच इज कॉल्ड फ्री रेडिकल ऑक्सीजन, वो न्यूट्रलाइज हो जाएंगे. और कुछ नहीं कर सकते, गुस्सा आता है तो एक फल तो खा सकते हैं ना, फटाफट जाइए फ्रिज में से फल निकालिए और फल खा लीजिए. तो ये तो तरीका बहुत आसान है, तो ये कर लीजिए. और अगर आप मेडिटेशन, अगर आप बाहर किसी को बताते हैं तो मेडिटेशन एज ए ट्रीटमेंट, एटलीस्ट 10 मिनट्स 3 times a day इफ यू डू राजयोगा मेडिटेशन, आपका गुस्सा खत्म हो जाएगा. और आप 7 days का कोर्स करिए और इसके बाद ये सीख लीजिए. सो एक बात, अच्छा काम शायद आप करते भी होंगे, अगर आप गुस्से वाले व्यक्ति हैं, शॉर्ट टेम्परामेंटल हैं, तो कम से कम 15 लोगों पर क्या करना है, स्माइल पास करना है. अगर मान लो आपको 15 लोग नहीं मिले तो, अगर मान लीजिए 15 लोग नहीं मिले आपको सारे दिन में, तो आप क्या करेंगे? थिंक वी आर, हम लोग बहुत होशियार हैं. सो किसी को भी हमें ब्लेम नहीं करना है कि ये मेरे गुस्से का कारण है, कोई मेरे गुस्से का कारण नहीं है. नेवर फील डिस्गस्टेड, हम लोग कहते हैं मैं तो गुस्सा नहीं करता, पर लोग मेरे ऊपर बहुत गुस्सा करते हैं और मेरे को बहुत कुंदक आती है, जहां जाता हूं वहां गुस्से का वातावरण है. नेवर फील डिस्गस्टेड ऑन समबडी इवन इफ दे आर एंग्री ऑन यू, कोई बात नहीं, आप परेशान नहीं हो जाओ. यू शुड ऑलवेज स्माइल बट नॉट इन फ्रंट ऑफ द पर्सन हुज इन बैड मूड, कभी नहीं स्माइल करना उसके सामने, वो गुस्सा आप पे फंसा देगा. सो आप अलग से अपने कमरे में शीशे के आगे स्माइल कर सकते हैं. ओके, थैंक यू. ओम शांति.
सदा खुश रहो, मुस्कुराते रहो, सदा खुश रहो, मुस्कुराते रहो, खजाना खुशी का लुटाते रहो, खजाना खुशी का लुटाते रहो, गाते रहो, गुनगुनाते रहो, गाते रहो, गुनगुनाते रहो, मिलन क्या